सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सतसाही परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त हुआ। रहस्य यथार्थ अध्यात्म ज्ञान सत्य भक्ति, इसके बिना ये मनुष्य जीवन आम सामान्य प्राणी जैसा था, पशु पक्षी के समान है। भक्ति हम मानव शरीर में प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर है, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये अपना कर्म भोगते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति के घोड़े हो, वहां बढ़िया व्यवस्था है, सेठ के घर कुत्ते भी बन गए और ये वहां उनके सारी सुविधा है, परंतु ऐसी सुविधा मनुष्य को भी नहीं उपलब्ध होती कहीं को। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जीवन यदि भक्ति नहीं करते मानव स्त्री पुरुष, तो उन पशु पक्षियों में उसमें कोई अंतर नहीं। सुविधा कर्मानुसार पूर्व जन्म के संस्कारों से सबको प्राप्त होती है, दुख और सुख दोनों साथ रहते। अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कदे मथुरा कदे काशी, यथार्थ ज्ञान ना होने से ये प्राणी मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले बिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सवतल लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने के लिए, एक नए पैसे के लिए, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमने वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता हो। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं, और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहां हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं। पांच वेद है, वैसे तो वेद एक ही होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है, भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान, वेद, वेद का अर्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद यानी सौसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है उसको सौसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म फोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आ गए, इसके ब्रह्मंडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाट दिए इसने, आप भी लूटता रहा, और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म होगी, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूं, यह कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सच परिपूर्ण है और आपने इसको सत मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर 30-40 सोना अपने घर पर निकाल कर उसकी शादी के लिए घरवाले ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी, फिर उसकी दुरुस्ती करके कमा और खा, दारू पी हुए, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी बिरानवाटी कर रहा था। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भक्त हो गए, 100 की 100 सच्ची है। अब यहां मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठपटांग जपो, दुर्मोक्ष ना दे, और घने करो तो ओम जपो, फिर हरे कृष्ण दास दिशा में दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताएंगे, इसके आधार से स्वर्ग जाओ, स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है, आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते हैं। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते उनका चार्ज साथ होता है, जैसे वहां कोई खाने की चीजें लेते हैं 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में, क्यों वहां बच्चे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिरा को। तो ये दुरुक्ति आपकी यों की हो रही है, आप विचार करो इन बातों पर, आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी, उसकी मुंह कांड जाते शोक व्यक्त करो, वो विमान ने दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए, पर ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी, और ऐसे गंदे लोग में माचे माचे फिरो, तुम आंख खोलो, इस सत्संग को सुन के भी आंखें नहीं खुलती, वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है, वो इंसान भी अच्छा नहीं, तड़प जानी चाहिए, तड़बला जानी चाहिए आत्मा को, किताब का मर गया, किस पे खोस गए, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है, रहम नहीं की धरती पर किसी के पत्थर, किसी स्वर से धोता है तो दोनों राजी बोलेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा, हम इतने बिगड़ चुके यहाँ पर, हम देवता थे सतवत में, अब दोबारा से आपका इतना चार किया जा रहा है, पहले तो पशु तो मानुष बनाए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू घटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुट्टी, फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए, अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो, किसी तरह आत्मा का उभारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा, अपने आप ही सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाली जाता था, पालिया जैसे व्यवहार हुए बकवाद, स्कूल में जान लग गया, 5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा। और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाए। तो कहने का भाव यह है कि ये आपके स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते हैं, पर सुना इसी लगन से जैसे अब सुन ले, भूल जाए आध घंटा जितनी देर सुने, सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इसे वापस नहीं जान दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के, और माँ बाप को पता होता उसका बेटा बेटी कितना दुख भी हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहां नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा, और वो मर्यादा से बाहर की बात है ना। था अगर कहता मैं चाहूं तो एक मिनट में धर्मदास इन सारे ले जाऊं, फिर इनके गड्ढू आइए वही ना थे वहां के टिके, अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया, पर आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सत्युग त्रेता द्वापर में इनके पूरा जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि दो साधना हम कर रहे हैं, इसी से ये मौज माजरी है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे, और फिर मैं इनको कैच करूंगा। उदाहरण देता हूं, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, मालिक वहां भी मिले होंगे। वेद बताते हैं परमात्मा के लक्षण वो झूठ नहीं होते, सो के सो सकते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है। भक्ति मार्ग में जो लगे हैं उन अच्छी आत्माओं को आके मिलता है, वो यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, और जो लगे नहीं है भक्ति पर उनको भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख मुंह से बोलकर वाणी द्वारा बताता है, उनको गुप्त भेद मंत्र बताता है, गुप्त मंत्र आविष्कार करता है, एक कवि की तरह आचरण करता है, अपने सूक्ष्म वेद ज्ञान को कावेना कविताओं से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है। तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं, परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया, इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा, इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए, सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सत्य बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता बेटा नारद इसका के जवाब दूं, मैं जब होश में आया मैं कमल के फूल पर विराजमान था, कमल का फूल जल में ही होता है, चारों तरफ आगाध जल था, मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है, आकाशवाणी हुई तप करो, मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो, उसके बाद लंबी कहानी है फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका विवाह कर दिया, सृष्टि रचो। सागर मंथन प्रथम किया था, वेद निकले चार, ब्रह्मा ने वेद पढ़े, उसमें से ओम मंत्र ले लिया। आकाशवाणी से जो हुआ था तप करो, वो तप ये सोच लिया भगवान का आदेश है, तप करो। वेद भी भगवान गिवन है, गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए, भगवान परमात्मा दत्त है। इनमें ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय 40, मंत्र 15, चारों वेदों में कहीं भी फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं किया, एक जगह लिखा है और स्पष्ट कर दिया, ओम करतु समर्थ कलवे समर्थ करतु समर्थ। ओम नाम का जाप काम करते करते सुन करो, विशेष कसुक के साथ सुन करो, अपना मूल कर्तव्य समझ कर सुन करो। अब दास आपको समझाना चाहता है कि ये हमारे दातव ग्रंथ है, शास्त्र है, ये कौन से किस सत्र के हैं। इन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है, और पुराण क्या है, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ जैसा वेदों को समझा तो उसके अनुसार अपनी संतान ब्राह्मण ऋषियों को बताया, तो ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान है, ये ऋषि ब्रह्मा जी की संतान है ब्राह्मण सारे। तो ब्रह्मा जी कहता कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया, ये फिर जानी जान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है, इसने तो ज्ञान अनुभव किया तो इसने अपनी कथा बताई, तो इस आधार से ऋषियों ने तप तो ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बता वेदों केवल ओम नाम है, ओम नाम वेदों से ले लिया, तो इससे इस आधार पर ब्रह्मा जी के वंशज ऋषियों ने तप किए, जबरदस्त तप किए, शरीर गाड़ दिए, परवाह नहीं की, मिट्टी चढ़गी शरीरों पर, खाना पीना त्याग कर मन की चाह मल गए कि भगवान मिले तो जीवन सफल, नहीं तो व्यर्थ है। तप किया, ओम नाम का जाप किया, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला कहता है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देहो सयाति परमाम गति। ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम अक्षर है, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण मुद ब्रह्म का स्मरण करने का, माम ब्रह्म। और तो इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ श्री त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली प्रभुति प्राप्त करता है। देवी पुराण श्री देवी दुर्गा जी अपने शिष्य प्रिय शिष्य हिमालय राजा को ये बताती है कि यदि तुझे मोक्ष चाहिए, उसने कहा जी मुझे ब्रह्म की जानकारी दो, मोक्ष मार्ग बताओ, तो देवी ने कहा कि और सब बातें छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर, इस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म लोक में जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है उसको प्राप्त कर लेगा, तेरा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुद ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम का नाम जाप करो। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। बच्चों इसने जुलम कर रखा, कति रास्ता नहीं दे रखा था, खुद मालिक आए अपने बच्चों को ऊपर ले जाके अपनी समर्थता अपनी शक्ति से परिचित करा, फिर वापस छोड़ा। 600 साल हो गए इस प्रोसेस में परमात्मा लगे हुए, जिसमें 6 गवाह आपके सामने दास ने आई विटनेस बता दिए। जब जाके दास की भी तसल्ली हुई कि सचमुच कबीर जी को न कबीर न को भगवान मान दान जुला, सारी उम्र का पुड़ा बनता बनता मर गया, रोटी भी ठीक से टाइम पर नहीं बनती थी, तो इसी को तो सक्षम कहते हैं, उसने जरूरत नहीं था, सब कुछ संकेत पे उसके 18 लाख बाबा जी आगे चेला समेत और सारी काशियानाथ जी कितने आए, 3 दिन तक भोजन खवाए। वो इस कुटियाई में बैठा था, जब भी घर में कुछ नहीं था। तो ये तो भगवान है, इसी का नाम तो परमात्मा है। सतगुरु दो चावे सो कर ही तो दे कोट दूर तो पर ही बहुत बहुत जंतरास निवार है। चित्रगुप्त कागज पाठ अब बच्चों प्रश्न कर रहा है कि हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र अनुसार होने चाहिए। अब शास्त्र कौन से ठीक है जो हमें मान्य हो भगवान की भक्ति के लिए? हिंदुओं के लिए वेद और गीता ये एथेंटिक स्क्रिप्चर है, एथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है, ये प्रमाणित है। और पुराण जो है ये ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने साधना की उससे जो उपलब्धि हुई। इन्होंने हठ योग किए, समाधि लगाई, समाधि के अंदर इनको किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऋषियों ने मान लिया भगवान पा गया, ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सतुति क्रिया, भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप अपने को छुपाए बैठे हो, हमने पहचान लिया। इसी प्रकार विष्णु जी को ब्रह्म पैदा कर दिया, जिनको काल ने विष्णु रूप में दर्शन दिया। उन्होंने मान लिया कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता रचन आर हूं, नथिंग एल्स। इसी तरह शिव जी को, इसी बात पर एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने सम्मान नहीं किया उनका, राजा भाई मैं बड़ा भाई है उसका, तो भी नहीं राजा बैठ जा। इनकी देखो बच्चों विचार करो, जिनको भगवान मानते थे इनमें शिष्टाचार की भी कितनी कमी थी। एक बड़ा भाई है विष्णु जी का और ये बैठा था शेष नाग की सैया पर, लक्ष्मी जी इसके चरण दबाई थी, आसपास इसके प्रशंसक खड़े थे विष्णु जी के। ब्रह्मा जी आया तो इसने अपना अपमान मान लिया कि इसने खड़ा होकर मैं लू हाथ मिलाऊं या सीने से लगाऊं या मेरे को आओ जी बैठो, कितना भी ठीक है इसने। ये फिर काम करो अच्छे भरे पड़े हैं ना भगवान मान्या करते। इस बात का दुख ब्रह्मा जी ने मान्या, अभी इसने सम्मान भी ना किया। ने बोला वो अभिमानी, मैं तेरा बाप हूं, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तू मेरे से पैदा हुआ और मेरा सम्मान नहीं करता, अपने बाप को देखकर भी तू अहंकार करता है, तू मेरा बेटा है और फिर भी सम्मान नहीं करता। उसमें बोला तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तो मेरे ना भी कम से उत्पन्न हुआ था। तो उसके प्रशंसक खूब हंसे, तो सबने बताया था कमल के फूल को तुम उत्पन्न हुआ और विष्णु के ना भी से कमल निकला। इधर मारना विष्णु ना अपने मेरा कमल किता आया कैसे ना भी में उग गया। ये तो सूखे चौधरी थे। तो इस बात पर ब्रह्मा बोला तेरी अकल ठिकाने करता हूं। विष्णु बोला आजा, चढ़ा ली बा दोनों ने और काट लिया शस्त्र, मरण मरण तैयार हो गए। कमाल की बात है, शिव पुराण में ऐसा लिखा, ऊपर से देवता आकाश तरंग पर फूल बरसावे, शाबाश मरो कट के शाबाश, देखते हैं कौन ताकतवर है। लेकिन भी सब बच्चा का कहां तक मास हो रहा है। देवता वह हरणों के लड़ो, उन्हें बीच माना चाहिए था। भगवानों आप ऐसे करोगे फिर मारा केरा होगा। भगवान मान के दोनों लड़ पड़े, बता वो तो इनका बाप जो काल निरंजन ने सोची है मरेंगे कट के, तेरे खान पीन का सिस्टम बंद हो जाएगा। इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, बोतल बोतल आपस में छूनेगा। ये दोनों डर गया, चकित हुए। जब इसका और छोर ढूंढ चाल पड़े और लड़ाई मिट गई, फिर काल आके खड़ा हो गया शिव जी के रूप में, साथ में दुर्गा को पार्वती रूप में आके ले आ। तब उनसे कहता कि बेटा तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तब उसने हाथ जोड़ लिए और सुनो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुमको एक एक जॉब दी है, एक एक विभाग दिया है, हरद को उत्पत्ति का, ब्रह्मा को स्थिति का, विष्णु को, और इसी प्रकार शंकर को ये संहार ध्रुव और रुद्र को संहार। ये रुद्र और शंकर एक का है। देवतान महाराज जब इसने ध्रुव भाव कहते हैं, आम आदमी महाराज जब इसको रुद्र कहते हैं, ये दो रूप बना लेता है। वैसे इसके 11 रुद्र हैं, 11 रूप बनाए थे इसमें। अब देखो ये पुराण है, शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर अध्याय है। इन पुराणों में लिखा है कि ये शिव रूप में आकर प्रकट हो गया। अर्णव के दो तय हो गए, फिर मार विष्णु पुत्रों, उनको पुत्रों कहा, और इसी प्रकार शंकर और उधर वो 4 अलग हो गए, हरियो पांचवा, वैसे तो चौथा ही है। तो ये भी ना समझ पाए कि जो इनका बाप है, अर्यो की इनका कोई माता पिता नहीं, और फिर इसने के जुलम कराया, ये बताऊं तो सर्वावे ना बताऊं ज्ञान अधूरा। ये शिव के मंदिरों में तो शिवलिंग रखे हैं, इनको को आगे विस्तार ना करूं तो अच्छा है। एक मिट्टी के पत्थर के बने हुए ये दो आइटम इन्हें दे गया आराम फोर, ये डरता नहीं है, माथे गला लिए वह शिवलिंग पूजा। प्राइवेट पार्ट ऑफ शिव एंड पार्वती, ये बदमाशी कर गया। अब सारा संसार इन पर मत्था टेक कर रहा, थोड़ा बेड़ा कर कोई कर। इसने ऐसा नाश कर रखा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ बृतास का जठर में कृपा। इसने नाश करण में कसर नहीं छोड़ रखी दत्त की, और दत्ता ने विकास करण में कसर नहीं छोड़ रखी। अज्ञान कितनी देर रुके आता है, अंधेरा लाइट के सामने नहीं रुक सकता। अब ये रोशनी उदय हो गई है, सूर्य उदय हो गया इस तत्व ज्ञान का, अब सब अंधेरा मिटेगा। बच्चों इस प्रकरण से संसिद्ध हो जाता है कि सबको कति मूर्ख बना रखा है। इसमें काल और दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु, इसको तो ज्ञान नहीं बेचारों को, इनको जैसे ही डरा धमका कर ला देते उसी तरह बन देते। उसके बाद यह शिवलिंग पूजा शुरू होगी और 13 गर्भ हो गया। अब आते इस बात पर कि हम भक्ति करें तो शास्त्र अनुसार करें, यदि पुराणों अनुसार करेंगे तो ये जड़े ढोआंगे जो इन्हें बताए रखे भगवान दिया ने। गीता और वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, तो इनके अंदर इनके अनुसार साधना करनी पड़ेगी। लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज भी है और वे ऑफ वर्शिप भी इनकम्प्लीट है। ज्ञान झूठ नहीं है वेद और गीता में, लेकिन संपूर्ण नहीं है। अधूरे ज्ञान से अधूरा काम, संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान। श्रीमद भगवद गीता श्री कृष्ण जी ने बोली ये मानते इनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बोलता श्री कृष्ण लिखे था, अंदर कैसेट काल की चढ़ा रखी थी, काल बैठ का बोल गया ब्रह्म। अब गीता में क्या बताया है, ये खुद अपने को नाशवान बताता है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में, 4 के 5 में, 10 के 2 में कि तेरे और मेरे बोध दिन होगी अर्जुन तू नहीं जानता, पर ये आगे भी होते रहेंगे। ये मत समझो कि आज ही जन्म, पहले भी जन्मे थे आगे भी होंगे, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते 10वें के 2 में कहा, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अब बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, दादा बता भाई, तो दादा जी कबीर भगवान इनके दादा है। तो बच्चों कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हम कौन दो बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई, इनका पिता ज्योति निरंजन, माँ दुर्गा और दादा सत्य पुरुष कबीर होगा। गीता गए 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख प्राप्त हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति यानी मोक्ष हो। फिर भक्ति करते इसी के लिए। गीता 10:16-24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे करते और अकर्तव्य है, जो करने योग्य कर्म है न करने योग्य कर्म है उनके लिए अर्जुन ये शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र आपको सिद्ध कर दिया, गीता और विष्णु इनके सतर के। हम बच्चों हमारे लिए जो शास्त्र है हमारा सूक्ष्म नेत्र जो कबीर गॉड गिवन है, हमारे को इसकी कति जरूरत नहीं थी ना गीता की ना वेदों की ना पुराणों की। और 10/17/1988 को दास का भाग्य उदय हुआ, पूज्य गुरुदेव से दास की किस्मत जागी, दीक्षा प्राप्त हुई, भीख मिली। उससे लेकर सन 2000 तक दास परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान और संत गरीब दास जी के अमर ग्रंथ के आधार से सत्संग किया करता था दास। उनकी ऑडियो भरी, उनकी वीडियो भी तैयार की थी, कैसेट बनाकर भी बड़ी बड़ी सी वो VCR में चल जा करती। तो उसके बाद एहसास हुआ कि ये ज्ञान तो भगवान पहले बताया करते हैं कि इससे नहीं माना, बाद में सारे भाग्य 64 लाख और खूब लाभ हुए। जब तक मालिक तेरे को पहचानेंगे नहीं, गॉड नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, कोई नहीं टिकेगा। दास को प्रेरणा दी गुरुदेव ने कि हो सकता गीता वेद पुराणों में पाना चाहिए ये ज्ञान, क्योंकि भगवान बता रहे हैं ऐसा है और वेद गीता सच्चे हैं तो इनमें पाओगी बात कुछ ना कुछ। 2001 में दास ने ये गीता मंगाई, उसको पढ़ना शुरू किया। मालिक की कुछ रजा थी, दूसरी खोलते तीसरा पेज पलटा, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61 शुरू में है ये, और गीता भी हाथ लागी जिसमें आमने सामने शब्द और अर्थ है। जे दूसरी आ जाती तो मत्था मार के बैठ जाता मैं भी। तो इसमें अर्थ सामने है, कभी एग्जैक्ट ज्ञान से घुमा जाता है। तो उसमें पाया के परमात्मा सबके हृदय विराजमान है, कर्मानुसार एक यंत्र की तरह घुमाता है और हे अर्जुन तू स्वभाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परमात्मा को प्राप्त कर। मेरा तो एकदम जैसे नींद तो जागया कर आदमी और सोपन देख ले को घना अच्छा और कूदता उठा करे, वह बनी मेरे साथ ओ तेरे की। फिर लग गया नोट कर लिया ये श्लोक अध्याय, फिर देखा धीरे धीरे रो तेरे की सारा खजाना भरा, सारी है सच्ची परमात्मा की। 15वां अध्याय 8वें अध्याय 7वां देखा रजगुण गर्मा सतगुण विष्णु, यह हम पढ़ाया करते सूक्ष्म वेद में, रजगुण गर्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा दरला सतगुण पावे रे। कबीर सागर में कबीर साहब के ग्रंथ में गरीबदास ये ग्रंथ में स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इनका बाप चौथा। इन चारों को भी छोड़ को पांचवे पहुंच जावे क्या कबीर शो हम पराव। तो गीता देखा दूसरे का 12वां श्लोक, चौथे का 5वां, 10वें का 2 और दूसरे का 17 के अविनाशी, तो वो है जिसने कोई नहीं मार सकता, जिससे सारा संसार व्याप्त है। तेरे की वो सती थी, आज मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे हृदय में जो उमंग और खुशी उत्पन्न हुई थी। हे भगवान जैसे खजाना पा जाए अगर कंगाल को, घना धन मिल जाए घना थोड़ा नहीं, तो वो पागल सा हो जाकर किसने बताऊं कैसे छुपाऊं तक बताऊं, ऐसी स्थिति होगी। तो मालिक ने खजाना दास को दिया, छुपा रखा था। ओहो, तो बच्चों उसके आधार से फिर गहरी नजर गीता तैयार करी दास ने, गीता के आधार से पुराणों को देखा, वेदों में देखा, सारे खजाना भरा पड़ा। ज्यों का त्यों सच्चाई। कबीर साहब कहते हैं वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे ना। अब दास आपको जो बताना चाहता हूं उस पर आता हूं कि हमारे जो ग्रंथ है गीता के 7 श्लोक 12 से 15 में आपको बता रखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से जो कुछ हो रहा काल कहता है इसका निमित्त मैं हूं, मेरे कारण है उत्पत्ति स्थिति और संहार। और जो केवल इन तीनों देवताओं तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इनसे ऊपर कोई भक्ति नहीं करना चाहते, और राक्षस स्वभाव को धारण किए नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर गीता अध्याय 7 के 20 से 23 में अन्य देवताओं के बारे में बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ कि इन देवताओं को कुछ शक्ति मैंने दे रखी है, लेकिन इन मूर्खों का अल्प बुद्धि वालों का ज्ञान गलत है, ये अक्षणिक लाभ मिलता है, ये नाशवान है ये फल। अपनी भक्ति को भी बताता 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ माने क्योंकि ये मोक्ष चाहते हैं, इन्होंने मुझे सुप्रीम मान लिया, मेरे आधार पर ओम नाम का जाप किया, वेदों तक सीमित रहे, ये भी मेरे वाली अनुपमा गतिम में आश्रिता है, इसमें आश्रित रहेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों तप करे, ओम नाम का जाप करा, तब से राजा बन गए, ओम नाम से ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्म लोक में जाकर फिर वापस आए, जन्म मरण बना रहा। फिर बताया कि खाक भक्ति हुई, जन्म मृत्यु मिटाया नहीं, सतलोक गए, फिर वो वापस लौट के नहीं आए, ब्रह्म लोक में गए, फिर आकर मरे, क्या फायदा उस भक्ति का। अब जो प्रश्न चल रहा है कि 7 में देख 18 का है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, पर मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। 7 में के 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बदते, बहुत बहुत के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ना तो दूसरी भक्तियों में भी नष्ट कर जाते हैं, मेरी भक्ति भी कोई कोई ज्ञानी किसी अंत के जन्म में एकादे में भूत भटक कर करता है, नाथ नीचे वाली देवता भक्ति करते रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूर होता है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव सारी सृष्टि का रचने वाला, सबके ऊपर जिसकी सत्ता, जिसकी साहिबी, जिसकी सत्ता, जिसकी हुकूमत सबके ऊपर है, वही पालन करता है, वही उत्पत्ति करता है, वही कर्मों के मार से बचा सकता है, पाप कर्म नष्ट करता है, वो आयु बढ़ा देता है, उसकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, ये बताने वाला महात्मा शोध वैसे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद जन ब्रह्म, इन्होंने अर्थों के भी अनर्थ कर रखे हैं, अनुत्तम का अति उत्तम कर दिया, वर्ग का जाना होता है आना कर दिया, अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्म मुखे शब्द है उसका ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद जन ब्रह्म। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ वहां इन्होंने ठीक रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ओम तत् सत, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना का केवल त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से श्रवण है इसका, 3 मंत्र का। अब आता हूं मैं 4 के 32 में, उसमें लिखा कि परमात्मा अपने मुख कमल से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी जो बोलता है उस वाणी में ऐसा ज्ञान है जिससे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है, सदा सुखी हो जाता है। उस ज्ञान को 4 के 34 में तत्वदर्शी संतों से पूछो, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत देव तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस परमात्म तत्व का, कौन से का, 18वें अध्याय के 62 वाले का, उस परमात्मा के संबंध उसका ज्ञान होता है, वो कौन है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता बोलने वाले कहा है कि जो केवल जरा वृद्धावस्था के कष्ट से, बच्चों वृद्धावस्था का जो दुख है ना, ये मृत्यु से बुंदा है, मौत तो एक बार हो जाए और यो कम से कम 20 साल मरे, फिर एनमेटी, कभी आंख दुखे, कभी दाढ़ दुखे, कभी टांग दुखे, कभी शुगर बढ़ गई, कभी बीपी बढ़ गया, उठा जाना बैठा जाना, कब्जी होगी, गैस हो, तो सुना नहीं, रोवे बैठ के, तो कर्महीन इंसान तो भक्ति नहीं करते। भक्ति करने वालों पर यह असर नहीं होगा, लेकिन मर्यादित रहेंगे तो। भक्ति भी कबीर साहब की अरदास के माध्यम से, कि वो केवल जरा मरण से छूटने का, मृत्यु से दुख से बचने के लिए केवल प्रयत्नशील है, कुछ नहीं मांगते, वो तत्परम से सारे धातु से और सारे कर्मों से परिचित है। आठवें के प्रथम अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत्परम, तीसरे में उत्तर दिया आठवें के श्लोक में, तीसरे में वो परम अक्षर पर। आठवें के पांच सातवें गीता बोलने वाला अपनी भक्ति कहता है, मुझे भक्ति कर, मेरे पास रहेगा, जन्म मरण बराबर रहेगा, अपना दोनों का, ये पहले ध्यान में सिद्ध कर दिया आपको। आठ में के आठ नौ दस में कहा, सचिदानंद ग्रंथ की जो भक्ति करता परम अक्षर ब्रह्म जी उसके पास जाता है। पंद्रह अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के स्मरण पति खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसी की भक्ति के लिए। पंद्रहवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा ही उदारते हैं, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, जो परमात्मा कहा जाता है परमात्मा, और जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो, मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है, उसकी साधना कहाँ है, वो ना वेदों में, वेद कतेब, वेद ये चार और चार कतेब इन मुसलमानों की ईसाइयों की, जबूर, एंजिल, तोरेत और कुरान, ये चार कुरान, चार किताब और चार वेद कहते एक जैसा ज्ञान है, यानी इनकम्प्लीट है, हम गलत नहीं कहते कि गलत है, अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान तो फिर लाभ क्या होगा, अधूरा काम। अब आपको बताता हूं थोड़ा सा, पाक कुरान मजीद देखो इसमें क्या बताया है, एक चैप्टर है उसका नाम है असुरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत असुरा 42 42, आयत नंबर श्लोक नंबर 1 2, आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम, आ माने है, मीम मन में है और मैं, ये दो अक्षर अलग अलग, जैसे क ख ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन सीन काफ, जैसे हम पंजाबी शिक्षा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे, तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला शिक्षा करते थे उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा ईड़ा उड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क गग्गा ग तथा त भद्दा द, तो कक्खा गग्गा क ख ग ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ऐ, सीन का अर्थ है स, का अर्थ है क, ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए सीन स क क ए स क, इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन दो आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। ये क्या है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत, ये तीन मंत्र, इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए स क, जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिख रखा है, बहुत कठिन। तो ऐसा कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, इसकी एब्रीवेशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा तब पता चला ये सूक्ष्म वेद में पहले ही था। बच्चों आंख खोलो, दास कौन है? कबीर साहब कहा करते हैं कि भाई मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन कौन जाने से बात नहीं। दास कहता विश्व में एक नंबर का तत्वदर्शन दास है, नथिंग एल्स, इतना कह रहा हूं। अब पाक कुरान सूरत फुरकानी 25, 25 में आयत 52 से लेकर 59 तक 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि हे हजरत मोहम्मद, हे मोहम्मद, हे नबी, हे रसूल, कौन बोल रहा है? कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह। कि ये काफिर लोग जो है कबीर अल्लाह को नहीं पूजते, इसके अतिरिक्त औरों को भी शरीक करते, दूसरे देवताओं को, तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए और इनकी बातों में नहीं आना, तेरी बात ना मानना, लड़ाई नहीं करनी, ते इनकी ना मानना, मेरी बातों में विश्वास कर। ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रखी, 7 मिनट तक पर्दा बैठा है। सृष्टि में सारी आयु उत्पत्ति, माता पिता भाई बहन सब, सारी नदी नाले तारे पृथ्वी स्वर्ग पाताल सब बनाया उसी ने, और वही पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है, गुनाहों को अच्छी तरह जानता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो यहाँ पाक पुराण भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसमें वो ज्ञान है ही नहीं उस अल्लाह का जिसने सृष्टि रची। तो ये गलत नहीं कह सकते किसी ग्रंथ को, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से होगा, और वो तत्वदर्शी संत बताता है। इसमें स्पष्ट कर दिया दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्रों ने कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे पाक कुरान सूरत असुरा 42:42 में प्रथम आयत में हा मीम, हा का अर्थ है मीम का अर्थ है मैं, जैसे अहा मम्मा कखा पंजाबी की वर्णमाला ना, ये अरबी वर्णमाला है, और मैं इसका अर्थ है हक मंत्र, हक मंत्र जिसके पहले अक्षर ये है ऐन सीन का। तो ये बच्चों ये तो एक संकेतिक है। वेद कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है वो सब सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों को विस्तार से खोल कर बताता है, उसका यथार्थ ज्ञान देता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 फिर दोहराता हूं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, बहुत बहुत के जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है कर्म की, अन्यथा वो ऐसे ही डलेड होकर चले जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि था, ओम तो नाम का जाप कर रहा था, साथ में तप कर रहा था, ये खिचड़ी ज्ञान है नहीं। सारे जड़े लोग हैं थे, अच्छा कितने बड़े ऋषि ला गया करते तुमने, आज वो बालक दिखाई देंगे इस बालक की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे। उसने ब्रह्म लोक की साधना करने का ठान रखी थी, वही टारगेट था। इंद्र आया, इंद्र की उर्वशी भेजी, सब फेल होकर चली गई। तब इंद्र को कहता है इंद्र आ जा तो तेरे को सही मार्ग बता दूंगा, ब्रह्मलोक की भक्ति कर ले, ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्म की साधना कर। ये तो सब का ये अज्ञान भर रखा है। इंद्र स्वर्ग का राजा बोला जी फिर देखेंगे, ये तमना मौज करते। ऐसे आप किसी आज कोई पोस्ट पर बैठे अच्छी पर उसने समझाने की चेष्टा करो, नहीं तो बाद की बातें हैं, फिर देखेंगे। कोई चौधरी पूरी है, अब्राहिम सुल्तान आदम को देखो, क्या क्या सुख थे, भगवान ने नरक से काट के बाहर धरा अपने बच्चे को, ये रोड़ मार रहा था काल मूर्ख बना रहे। तो कहते हैं बहुत बहुत अंत के दिनों में कोई मेरी साधना करता है, मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापिस आओगे, तब से राजा बनेगा, फिर गदा बनकर धक्के खाओगे। ये खाक साधना थी। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करुआ के राज दे दिया, लक्ष चौरासी में ठोक दी। आपको बताया शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी, किसने करवाई? पापात्मा ने, इसको परमात्मा कहते थे। बच्चों आंख खोलो, उस बाल की कृपा कैसी बरस रही आपके ऊपर, और इतना ज्ञान समझ गए बच्चों, नहीं मानोगे तब तो पत्थर हो गए। कामना मना नहीं किया किसी संत ने, लेकिन भगवान बोलना गलत है। खूब डटकर मेहनत मजदूरी करो, किसानी करो, दुकान पर जाओ, जो भी जॉब है काम करो, नौकरी करो, नेक नीति और डट कर सेवा करो, गफलत ना करो वहां पर, ताकि सबको अच्छा लगे कि भगवान से डरने वाला है, किसी भी काम में कोताही नहीं करता, कोई आलस नहीं करता, ठगी नहीं करता। और मालिक ने याद रखो, अब जैसे आपको बताया कि पंजाब का एक राम राय नाम का सरदार जी थे, वो लोग परमात्मा के चाहने वाले, संतों का सम्मान करने वाले शुरू से ही है, क्योंकि उनके गुरुओं ने एक ऐसी धारणा में भर रखी है। संत गरीब दास जी का एक शिष्य ब्रह्म वेदी का पाठ सुबह सुबह बैठ कर ऊंची आवाज में एक तालाब पर बैठ कर रहे था, स्नान करके कुएं पर तालाब पर वहां बैठ कर ब्रह्म वेदी यानी वाणी का पाठ कर रहे था, सुबह सुबह गरीब दास जी की वाणी का, जो अपने नियम करके उनका अपने हिसाब से बनाया हुआ था, उसी वाणी से निकाल कर। तो राम राय चौधरी 920 गेगा मालिक था, वो भी घूमने फिरने गया फ्रेश होने, तो उसने आते समय देखा एक संत, वो वाणी बोल रहा है कि ये वाणी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनते रहते हैं, लेकिन वो वाणी कुछ विशेष कसक करी, खींच लिया उसको वहां बैठ गया जाकर। उसने जब अपना पाठ कर लिया तो उसे पूछा कि हे महात्मा जी, हे भगत जी, ये वाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब में तो नहीं है, ये किस संत की वाणी है? तो उसने बताया मेरे गुरुदेव की है, संत गरीबदास जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए संत है, विश्व उनके बराबर संत नहीं, उसके ऊपर उसकी वाणी है, अच्छे लिख रखी थी। उसने पूरा पता नोट कर लिया संत गरीबदास जी का, गांव सुलानी जिला उस टाइम जो भी था, दिल्ली के पास बहादुरगढ़ के पास, वहां पूछ लियो, ऐसे ऐसे सारी डिटेल लेकर चल पड़ा। उन्होंने सोचा मिलना चाहिए संत से, क्या वो संत जीवित है? कहाँ जी जीवित है। तो चल पड़ा, पैदल चला करते थे, 3 दिन में पहुंचा। सुबह सुबह पता करा भी संत गरीबदास जी कहाँ पर है, मिलना है। उनका महल था, उनके नाना जी का बनाया हुआ, उसमें संकेत कर दिया कि वहां सामने है, उसमें चले गए। वहां कुछ भगत बैठे थे, एक दो गांव का, कुछ बाहर के आ जाते थे, ज्ञान चर्चा सुना करते थे। गरीबदास जी सुबह सुबह एक बार घूमने जाते थे, किसान थे, 2,500 बीघा जमीन थी, अहंकार नहीं था, खेत में जाते थे, पशुओं का चारा काट के सिर पर दरका ध्यान लेके आया करते, घूम भी आते थे। तो उन्होंने पूछा भी संत गरीबदास जी कहाँ है, राम राय ने पूछा जो मकरान, वो बोले जी घूमने फिरने गए खेत में, कितनी देर में आएंगे? भैया ये तो संत की मर्जी है, मौत जाए कब आवे कब ना आवे, आवे तो गए हम भी इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला कितनी देर में आऊंगा पता नहीं। उसने सोचा इतनी दूर आ लिया, संत के दर्शन करके चैन लूंगा, वो चल पड़ा। उन्होंने बताया कि आगे जाइए, आगे अरहट है, उस रेट के पास एक जंटी का भरा पेड़ है बड़ा, वहां पाऊंगे अपने, वहां कुएं पर स्नान भी करते हैं। तो वो जा रहा था गरीबदास जी, धोती कुर्ता हरियाणा की जो वेशभूषा होती थी, सिंपल मैन सामान्य होता था यहाँ का वेशभूषा, इस तरह रहते थे वो, भाई आडम्बर संत नहीं करते। तो उस राम राय ने उस किसान से पूछ लिया, उसने किसान समझा, सिर पर पशुओं का चारा और रोटा धर रखा, ज्वार का, उसने बोला भाई मैंने गरीब दास महाराज जी संत जी से मिलना है, बताओ इधर घूमन आए हैं, कहाँ से है वो उनका खेत, कहाँ ठिकाना है उनका। गरीबदास जी बोले आ जाओ, उन पहचान दिया संत जी अभी थे कि आ जाओ मेरे साथ मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस आए, वापस जा लिए वो गांव में, आ जा लेकर आ गए। वो भगत जो वहां खड़े थे उन्होंने बाज के किसी ने बोटा लिया, किसी ने चंडू प्रणाम किया, फिर पानी पिला, फिर नहाऊंगा पानी लाए स्नान कर दिया। उसने सोची उन पूछा रहा महात्मा कौन सा है वो संत, तो वो भगत बोले ये तो है गरीबदास। वो सामने मुड्डे पे बैठ गया और बैठा बैठा ये मन में कल्पना कर रहा था कि ये गुरु ये महाराज है रे तेरा गजब। उसने कल्पना कर रखी थी, उसका इमेजिन था कि बड़ी बड़ी जटा पाऊंगी, गणों माला मला होंगी और दूना दाना ला रखा होगा किधर, या डेरा होगा तो बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े लाल पीले, यानी कोई आडंबर जरूर पाओगा। संत को ऐसा ही माना जाता है उधर, सारे ऐसे मानते थे। उसने देखा सिंपल किसान सामान्य आदमी, इसका 2,500 बीघे जमीन बताओ है, इसलिए लोग इसके चापलूसी करते हैं, ये गुरु क्यों बना रहे हैं इसको, ये तो मेरे जैसा किसान है तेरा गजब हो, ये खोबदा पहाड़ तो निकली चुया इतनी दूर था यो संत पाया। ये मन सोचा बैठा बैठा गरीबदास जी स्नान करके तुरंत और धोती बांधा करते हैं हरियाणा में, और एक और उसका पल्ला सा धोती का ही एक बेल्ट सी बांध जाकर उसने अड़बंद बोलना अड़बंद, उसको बांधने के लिए तैयार हुए था, हाथ पे उंगली का चोट लाग दी थी, लीला थी दादा, पट्टी ही बांध रखी छोटी सी। तो राम राय से बोले भाई झुमक रहा, उसने अपना राम राय नाम बताया, परमात्मा बोले रहा झुमक रहा, ये इसका उर्फ नाम था। वो ऐसे चंचल माइंड का था पूरा, मतलब विश्वासी कम था, हर चीज में कोई ना कोई पूछा था छी अटपट रखा करता, तुर्क भी तुर्क ज्यादा करता था, झूमकरा डगमग से ख्याल का था, इस तरह उसको झूमकरा भी कहते थे। और वहां बैठे बैठे भी वो कल्पना इसी कर रहा था, यो किसा गुरु ये क्या हुआ प्लान है झूमकरा का। जब उसे समझ गया कि मैंने तो बताया भी को नहीं, फिर भी उसने कहा कि भाई मेरी धोती बांध दे पल्ला, मेरा हाथ का चोट लाग गई है। उसने उठ कर और वह गांठ लाई और धोती शरीर के मां के निकल कर धोती और गांठ लग गई। उसने फेर खोला जल्दी, दूसरा फेर ऐसे किया, तीसरा फेर ऐसे करा, वह गांठ फिर शरीर के अंदर से निकला हुआ। तो गरीबदास जी बोल रहे झुमक रहा मैं तो तेरे जैसा किसान हूं, या गांठ ना लगती क्या बात होगी। ऊपर देखा विष्णु रूप धारण कर रखा, क्योंकि पुजारी विष्णु का था, बेसिक वो बने हुए थे सिख, लेकिन ये जैसे वहां पर 135 गांव गुजरा के वो सारे सरदार को वहां है, और वो रामकृष्ण के पुजारी हैं ज्यादा से ज्यादा, और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करते हैं, पाठ भी करवाते हैं। तो कहने का भाव है कि वहां पर वो पैरों में पड़ गया कि भगवान माफ करो मैंने बहुत अच्छी भिंडी कह दी। फिर वो उसी रूप में आ गए गरीबदास रूप में और बैठ गए, फिर चर्चा शुरू हुई। सारा ज्ञान समझाने के बाद वो राम राय कहता है भगवान मैंने सारा घूम लिया ये ज्ञान नहीं पाया। गरीबदास बोले पाओ भी को नहीं, सब गीता का मूल है राई झूमक रहा, ये सुख संवेद समूल सुनो राई झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कहे राई झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। बच्चों उनको पूरा ज्ञान बताया कि करोड़ों में नहीं पाओ तुझे इस ज्ञान के बताने वाला, अरबों में, उसमें संत गरीबदास जी थे, केवल संत गरीबदास जी थे पूरे विश्व में एक रिश्ते तो बेतल जाने वाले, लेकिन वो डिस्क्लोज ठीक से नहीं करना था उन्होंने, लिखवा गए सारा, आज ये आपके लिए खजाना आज खोल रहा था। अब कलयुग पथ पर जो 5 बीत गया और तो बच्चों आपकी किस्मत देखो जनो, ऐसे समय में ये बच्चों का काम नहीं, सामान्य बात नहीं है कि ऐसे संस्कार बनाना ही मालिक ने बनवाए। तेरा कितने युगों से आपको संवार संवार कर प्रेरित कर करके चार्ज करते जा रहे, और आज आज ऐसे समय पर आपको ऐसे समय पर जन्म दे दिया। आने वाली संतान परमात्मा के बच्चे आपसे प्राप्त शरीर में वो तो बड़ी बुराई भगता होंगे। और बच्चों जिनके संतान नहीं है उन जैसा आज किस्मत वाला मैं नहीं मानता धरती में, तो समाज कुछ करो, क्योंकि दातुम का जो पैमाना वो अलग है। उनने पिछले जन्म गणित सुंदर जी रखे हैं, कभी किसी का एक दाना भी नहीं खाया, ना रखा ना दिया, परमात्मा की बातों पर कुछ असर किया, उनका लेन देन कति समाप्त कर दिया, करो सुला रखा, इनका उन्हें सतभक्ति मिल गई, वो सीधे वहां जाएंगे। जब डटे रहे तो समाज की तरफ देख कर नहीं बकवादा बढ़ गए, किसी का गोद ले लिया फरार ले लिया, इस अंतर दूर कर लेंगे, वो संस्कार फिर खराब करेंगे अपने अपने आड़े सुख नहीं देते। कलयुग में गोद लिया तुमने किसके शर्मा मानस करेगा, तो मेरा राय है इस कर्म में बना लो निकल जाओ गंदे लोग तो निकला जाता होता है। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे, संसारी दी गल्ला चिन्ह न बूझ शब्द जो गैरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे, ऊंची थलिया खेती बोवे भूल ही नजरे, श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे देखत ना सुचेरे, ये संसार समझदा नाही कहिंदा शाम दोपहरे, ये संसार समझदा नाही कहिंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे। बच्चों सुधर जाओ संभल जाओ, इतना गजब का सुअवसर आपको मिला है इस जीवन का, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, साधन से ती मस्करी चोरा नाल साल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युग के मान, आप वो युगन युग के मान हो, वो पहलवान हो इस भक्ति के खड़े, क्योंकि फाइनल गेम आ रहे हो, सावधानी बरतना, मालिक आपको सदूरी दे हिम्मत दे बुराइयों से बचाव मोक्ष दे सत साहिब।